Om Shanti. Srimad Bhagavad Gita, Adhyaya Dusra, Shlok Number 14. He Kunti Putra, Sardi Garmi, aur Dukh Sukh ko dene wale Indriyo aur Vishayo ke Sanyog Totpatti Vinashashil aur Anitya hai. इसलिए हे भारत उनको तो सहन कर क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मुक्ति अर्थात मोक्ष के योग्य होता है। तो भगवान कह रहे हैं हे कुंती पुत्र सर्दी गर्मी और दुख सुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग अनित्य है विनाशशील है क्षणभंगुर है इसलिए हे भारत तू इनको सहन कर क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वही क्या मुक्ति या मोक्ष के योग्य है। इंग्लिश में एक शब्द है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स अर्थात तत्व विज्ञान। तत्व विज्ञान में कॉज एंड इफेक्ट कारण और परिणाम इसकी चर्चा की जाती है। कॉज है तभी इफेक्ट हो रहा है। जो भी इफेक्ट है उसके पीछे एक कॉज है। इस थियोरी कॉजैलिटी जिसको कहते हैं ये जो मेटाफिजिक्स का सिद्धांत है कॉज और इफेक्ट इस पर सभी धर्मों ने कुछ न कुछ कहा है। हर एक फिलोसोफर के एरिस्टोटल से लेके तो डेविड ह्यूम तक बुद्धिस्टिक फिलोसॉफी से लेके तो हिंदुस्टिक फिलोसॉफी तक अलग अलग सिद्धांत और अलग अलग मत है। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। जो भी हो रहा है जो भी इफेक्ट है जो भी परिणाम है उसका कुछ ना कुछ कॉज है कोई ना कोई गहराई में कारण है। कुछ कारण है जिसको कहा जाता है नेसेसरी रीजन। दूसरा कारण होता है जिसको कहते हैं सफिशियंट रीजन। तीसरा एक कारण होता है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी रीजन। जो भी हो रहा है वो कॉज और इफेक्ट ए कॉज है ए से बी हो रहा है बी इफेक्ट है वो भी सुख हो सकता है दुख हो सकता है उदासी हो सकती है कुछ भी हो सकता है खुशी हो सकती है अतीन्द्रिय सुख हो सकता है परंतु कारण है। जो कारण इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना भी हो ही नहीं सकता उस कारण को कहा जाता है नेसेसरी रीजन। नेसेसरी रीजन एक दूसरा है जिसको कहते हैं सफिशियंट रीजन अर्थात ए है परंतु सी भी हो सकता है साथ साथ डी भी हो सकता है साथ साथ ए के अतिरिक्त कुछ और भी है और तीसरा है कॉन्ट्रीब्यूटरी रीजन। कॉन्ट्रीब्यूटरी रीजन अर्थात जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष कारण नहीं है परंतु मदद कर रहा है भी उत्पन्न करने के लिए। ये जो थियरी है कॉज एंड इफेक्ट, कॉजैलिटी या मेटाफिजिक्स इसको कहा जाता है। जब बी हो रहा है तो जरूर ए है। यहां दुख आया है, जरूर कुछ न कुछ ए हुआ होगा या फिर कुछ न कुछ सफिशियंट रीजन होगा उस ए के, मुख्य ए के साथ छोटा सा सी और छोटा सा डी कहीं होगा, या फिर कुछ कंट्रीब्यूटरी रीजन हो सकते हैं ई और एफ जो जिन्होंने मदद की इस परिणाम को लाने के लिए। जीवन में जो भी हो रहा है इस कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी के आधार से हो रहा है। हिंदू धर्म ने इसे कर्म का सिद्धांत कहा, कर्मा फिलॉसफी। भगवद गीता ने भी कई जगह पर इस पर चर्चा की है, इस कर्म के सिद्धांत पर। जो भी परिणाम हो रहा है उसका कारण कुछ ना कुछ है। भगवद गीता कहती है कारण एक तो आत्मा हो सकती है, दूसरा शरीर हो सकता है, तीसरा इंद्रिय हो सकती है, चौथा परमात्मा। अलग अलग कारण बताए हैं अलग अलग जगह पर। बी जो उत्पन्न हो रहा है वो ए से ही निकल रहा है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। यहां पर अर्जुन को कहा जा रहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, अर्थात इंद्रियों से, इंद्रिय और विषय दो चीजें हैं। एक है इंद्रिय सेंसेस, दूसरा है विषय ऑब्जेक्ट। सेंसेस एंड ऑब्जेक्ट इनका संयोग, ये जब मिल रहे हैं स्पर्श से उत्पन्न हो रहे सुख, इंद्रिय इंद्रिय से मिल रही है या इंद्रिय ऑब्जेक्ट विषयों से मिल रही है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा, इनसे उत्पन्न होने वाला जो सुख है और जो दुख है वो उतना ही अनित्य है जितना शीत और उष्ण, जितना ठंडी और गर्मी। इसलिए आगमा पाइनो नित्यस, आना और जाना इनका स्वभाव है, किसका, सुख का और दुख का। स्थास्तितिक्ष स्व भारत, इनको तो तितिक्षा, तितिक्षा शब्द है। व्हाट इज तितिक्षा? तितिक्षा किसको कहते हैं? अंग्रेजी में अलग अलग शब्द है। एक है टॉलरेंस सहन करना, उसके ऊपर है एंड्यूरेंस थोड़ा ज्यादा सहन करना, उसके ऊपर है फोर्टिट्यूड सब कुछ बिना किसी भावना के बिना प्रभावित हुए सहन करना, उसके ऊपर। और एक है स्पार्टन सिंप्लिसिटी, स्पार्टन स्पार्टा, स्पार्टा नाम के गांव में जो लोग रहते थे सब कुछ सहन करते थे, कुछ उनको प्रभावित नहीं होते थे। तो यात्रा चालू होती है टॉलरेंस से, सहन करना, एंड्यूरेंस उसके थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ज्यादा ही सहन करना परंतु प्रभावित नहीं। टॉलरेट कर रहे, सहन कर रहे परंतु दुखी भी है, मरमर के सहन कर रहे, उसके ऊपर है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड अर्थात जरा भी कोई असर नहीं है, बहुत दुखी दुख दिया जा रहा है परंतु असर कुछ भी नहीं है। और उसके भी ऊपर सबसे ऊंचा जो शब्द है वो है स्पार्टा, स्पार्टन सिंप्लिसिटी जिसको कहते हैं, सब कुछ ऐसे सहन करना जैसे कुछ नहीं हो रहा है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, हे कुंती नंदन, हे पार्थ, स्पर्श से उत्पन्न जो सुख है, इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न जो सुख है, इनके समभोग से उत्पन्न जो सुख है, वो सभी सुख शीत उष्ण ठंडी गर्मी के समान अनित्य है। वो सारे सुख आगमा पाई नु नित्यस, आने और जाने वाले है। जो आया है वो जाएगा। दुख होता है क्योंकि जो आया है उसको ये समझ लिया वो जाएगा नहीं और उसको पकड़ लिया। मिलन और विरह, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, जय और पराजय, हानि और लाभ, नित्य और अनित्य, सर्दी गर्मी, यश अपयश, पेयर्स ऑफ अपोजिट, इन सब में जब एक आता है, जब व्यक्ति दूसरे को देख लेता है तब दुखी नहीं हो सकता। यश में जो अपयश देख ले, सुख आया पर उस सुख अपने साथ क्या लेकर आया है, दुख भी लेके आया है। पर व्यक्ति दुख को भूल जाता है और सुख में डूब जाता है और सुख को ही सब कुछ समझ लेता है, परंतु वो सुख साथ में दुख भी लाया है। जो व्यक्ति दुख में सुख को देख लेता है, जो हो रहा है उसके विपरीत उसमें देख लेता है, वो अप्रभावित रहता है। बाकी जो केवल एक ही को देखता है वो दुखी हो जाता है या सुखी हो जाता है। तो हे कुंती पुत्र, पाई आगमा पाइनो नित्यस स्थातितिस्तिक्षव भारत, तितिक्षा इनको तू सहन कर। क्योंकि भागे उत्तर है क्यों सहन कर, क्यों सहन कर। यम ही न व्यथयन्तेते पुरुष पुरुष शुभ समदुख सुखम धीरम। धीर पुरुष जो होगा वो क्या करेगा, सम दुख सुखम धीरम, दुख और सुख दोनों को ही समान देखता है। यम ही न व्यथयन्ते, वो व्यथित नहीं होता है, उद्विग्न एजिटेटेड एक्साइटेड नहीं होता है। पुरुषम पुरुषस्व, हे पुरुषों में जो तुम श्रेष्ठ हो सुनो, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ऐसा जो व्यक्ति है जो उद्विग्न नहीं होता, जो एक्साइट नहीं होता, जो डिस्टर्ब नहीं होता, किससे, दुख से और सुख से समान रहता है, वह व्यक्ति धीर पुरुष है। उसको कहा जाएगा धीर पुरुष। ऐसा ही व्यक्ति सोमामृतत्वाय कल्पते, कल्पते अर्थात योग्य है। किसके योग्य है, अमृत के योग्य है अर्थात मुक्ति के योग्य है। परंतु जब सुख आता है, व्यक्ति उस सुख में इतना डूब जाता है कि वो सुख जब तक दुख बन जाता है तब उसको होश में आता है कि ये सुख था ही नहीं, ये दुख था। परंतु टाइम गैप लंबा कभी कभी हो जाता है, इसके लिए वो यहां पहचान नहीं पाता उसको कि यही दुख था, वो इस सुख को यही सुख था, ये इस सुख को सुख ही समझता है और धीरे धीरे यही सुख फिर एक दिन दुख बन जाता है और फिर उसको वैराग आता है। ये दुख यदि एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल ए है, ए से दोस्ती की और एक दिन ए ने धोखा दिया यहां पर, तो ए से वैराग आ जाता है उसको। परंतु ए से वैराग आने के बाद वो ये नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि ए ने धोखा दिया, इसके लिए वो अब बी को ढूंढने लगता है। फिर कुछ समय के बाद में बी भी धोखा देता है, फिर बी से वैराग आता है, फिर उसके बाद में सी को ढूंढता है। ये जो मित्र था यहां शत्रु बन गया। वो ये सोचता था जो मित्र है वो शत्रु बना, इसके लिए अब दूसरा मित्र ढूंढता है, फिर तीसरा मित्र ढूंढता है, फिर चौथा मित्र ढूंढता है। यदि वो ये सोचे कि मित्रता ही शत्रुता बन गई तो शायद ये चक्र आगे नहीं घूमेगा। पर वो सोचता है मित्र शत्रु बना, फ्रेंड हैज बिकम एनिमी, बट लेट हिम थिंक दैट द फ्रेंडशिप हैज बिकम एनिमिटी। यदि फ्रेंडशिप से ही वैराग आ जाए तो ये चक्र आगे नहीं घूमेगा, परंतु वैराग उसे व्यक्ति से आता है, इसके लिए परेशान होता है, दुखी होता है। यहां पर कहा जा रहा है जीवन में दुख और सुख ये दोनों आएंगे, तुम उन दोनों को ही अनित्य समझो। सुख को अनित्य, दुख को तो अनित्य समझ लिया, पर सुख को भी अनित्य समझो, क्योंकि व्यक्ति की आसक्ति सुख में भी है और दुख में भी है। जब दुखी होता है तो सुख ढूंढता है, और जब सुखी होता है तो दुख ढूंढता है। सुख में भी ज्यादा समय टिक नहीं पाता है, सुख के बाद उसे बेचैनी होती है, सुख मिलने के बाद। सुखी होने के बाद में दुख के मार्ग ढूंढता है, और मार्ग कैसे ढूंढता है, चाह से। जब साइकिल थी तो चाह थी कि, जब कुछ भी नहीं था तो लगा कि साइकिल मिल जाए, साइकिल की चाह उसे दुखी किए हुए है। एक दिन साइकिल मिल गई, पर साइकिल मिलने के तुरंत बाद दुख चालू हो जाता है। जो चीज नहीं थी, नहीं होने का दुख था, अब मिल गई, अब मिलने का भी दुख है, क्योंकि अब चाह कुछ और है, अभी कुछ और चाहिए, अब इसके आगे का चाहिए, इसलिए अब वो छोटा हो गया, मिलते ही मिट्टी समान हो गया, व्यर्थ हो गया, फिर कुछ और खोजता है। फिर कुछ और मिलने के बाद टाइम लगता है मिलने को, यहां साइकिल थी, साइकिल से यहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं से साइकिल मिलने को कुछ टाइम लग गया, तो उतना टाइम बेचैन रहा। फिर जब साइकिल मिली, गाड़ी मोटरसाइकिल मिलने तक कुछ समय रहा, यहां पर बेचैन रहा। फिर मोटरसाइकिल से कार मिलने तक यहां पर बेचैन रहा। फिर ये जो बेचैनी है, अब एक दिन उसको सब कुछ ही मिल गया। यहां पर घर बिल्कुल नहीं था, सड़क पर सोता था, सोचता था एक आध घर मिल जाए। एक दिन झोपड़ी मिल गई, झोपड़ी मिलने के बाद सोचता है कि झोपड़ी से क्या होगा, बड़ा घर चाहिए। फिर यहां घर बनाया, घर से क्या होता, बंगला चाहिए, यहां बंगला बन गया। 10 साल में बंगला बना, 10 साल में बेचैन 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 बेचैन। अब 10 साल में सब कुछ मिलने के बाद अभी वो बेचैनी के संस्कार है, वो काम कर रहे हैं यहां पर।
तभी तो साइकिल चलेगा।
ये बेचैनी क्यों थी, क्योंकि वो मिल जाए, अब मिल गया, अब मिलने के बाद नहीं बेचैनी। यहां था कि कोई भी मुझे नहीं जानते, मैं कैसा हूं, अकेला, कोई भी मुझे जानते नहीं, मुझे सब जान जाए, मैं प्रसिद्ध और फेमस हो जाऊं, यहां पर इच्छा थी। बहुत कोशिश की, भाग दौड़ की, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन सब कुछ किया, यहां जाके व्यक्ति फेमस हो गया। फेमस होने के बाद तुरंत दुखी, यहां दुखी कुछ और कारण से। अभी सेलिब्रिटीज की अपने के अपने दुख है। वोल्टेयर नाम का एक फिलोसोफर था फ्रांस में, वो बड़ा दुखी था कि मुझे कोई जानता ही नहीं, और उसकी इच्छा थी कि मेरे विचारों को सब समझे, मतलब थोड़ा आगे जाऊं, बढ़ू। बहुत कोशिश की और एक दिन बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर बन गया, इतना प्रसिद्ध बन गया, यही तो इच्छा थी उसकी, ऐसा प्रसिद्ध हो जाऊं कि पूरे फ्रांस में मेरा नाम हो जाए। तो नाम हो गया वोल्टेयर का फ्रांस में, परंतु वहां ऐसी प्रथा थी उस समय, उस 16 सेंचुरी में, कि ऐसा कोई महान व्यक्ति हो उसके कपड़े का यदि टुकड़ा भी मिल जाए थोड़ा सा, तो बहुत बड़ा भाग्य खुल जाएगा। तो रास्ते से चलता था, लोग उसको पकड़ पकड़ के कपड़े फाड़ देते थे, उसके बॉडीगार्ड रख के चलना पड़ता था उसको कहीं पर भी, भारी पड़ गया उसको। सोचता था पहले ही ठीक था, कहीं आराम से घूम फिर सकता था, जहां जाना है वहां, यहां तो जहां जाओ लोग पागल कर देते। दुख तो वही रहा, पहले कुछ कारण कॉज कारण कुछ था, अभी भी दुख है। क्या करो, क्या कहा यहां पर, हे कुंती नंदन, तू इंद्रिय और विषय से उत्पन्न जो सुख है इनको अनित्य जान। ये वैसे ही है जैसे सर्दी आती है फिर गर्मी होती है, आना और जाना इनका स्वभाव है। इसके लिए न सुख में इतना उछल, जितना जो सुख में उछलेगा दुख में उतना ही उसको दुखी होना पड़ेगा। प्रस्तुति हो रही है तो बहुत गदगद हो रहा है व्यक्ति, उसी अनुपात में जब निंदा होगी तो दुखी भी होना पड़ेगा। अब तारीफ हो रही है फिर बदनामी भी होगी, सब होगा। इसके लिए अप्रभावित, इनको क्या समझ, आने और जाने का ये खेल है, जो आया है वो चला भी जाएगा। उस दिन सुनाया था ना, मैं भी घोड़ा था चला गया, लोग आ गए दुख मनाने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, घोड़ा भी चला गया तो वापस बहुत सारे घोड़ों को लेके आए, लोग फिर आ गए, बहुत अच्छा तुम्हें खुश होना चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं भी, घोड़े ने पैर बेटे की टांग तोड़ दी, फिर लोग आ गए दुख मनाने, बहुत बुरा हुआ। वो कहता है मैं भी, सेना आ गई सब युवकों को ड्राफ्ट करने, पकड़ के लेके जाने के लिए, पर इसको छोड़ दिया, लोग फिर आ गए, अच्छा हो गया। वो कहता है मैं भी, सुख और दुख ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य ना सुख है, लक्ष्य ना दुख है, इन दोनों से जो परे है वो एक अवस्था है जिसको आनंद कहा जाता है, वो अक्षय है, इम्पेरिशेबल। सुख और दुख ये अगर लक्ष्य रखा, व्यक्ति सुख चाहता है, यही दुख का कारण है, ये चाह दुख का कारण है। डिजायर टू बिकम हैप्पी, डिजायर टू बिकम हैप्पी मेक्स हिम अनहैप्पी। जितना सुखी होना चाहता है उतना ही दुखी होता है, जितना सुख की चीजें बटोरना चाहता है वो चीजें मिलते ही दुखी होता है, जितने सुख के संग्रह करता है उतना और दुखी दुख का आह्वान करता है, जितना यश चाहता है अपयश साथ साथ पीछे आता है, जितना स्तुति के पीछे भागता है साथ साथ निंदा भी होती है, फिर वो निंदा उसे बहुत दुखी करती है और डिप्रेशन में डाल देती है। एक्सपेक्ट करता है चीज हो, और ये समझते समझते बहुत टाइम हो जाता है, ये समझते समझते कि ये जो व्यक्ति था जिससे ए से दोस्ती की थी, ए ने एक दिन धोखा दिया बी को ढूंढा, बी ने धोखा दिया सी को ढूंढा। अमेरिका में एक व्यक्ति ने अपने अनुभव लिखा था, उसने 8 बार शादी की, पहली बार शादी की, कुछ महीने के बाद पता चला ये ठीक नहीं है, ये सुख नहीं दे सकती, ये स्त्री गलत है, शी इज रॉन्ग, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दिया, ए को छोड़ा, फिर बी को पकड़ा, फिर बी को पकड़ा तो बाद में लगा कि ये सही है, वो ठीक नहीं थी, पर कुछ महीनों के बाद पता चला इसका भी, ये भी गड़बड़ है, फिर इसको भी छोड़ा, फिर इसको छोड़ने के बाद कहा कि दोनों भी गलत थी, अब तीसरी को पकड़ना चाहिए, तो तीसरी को पकड़ा, तीसरी को पकड़ने के बाद भी बाद में पता चला कि ये भी उसी कैटेगरी की है, कोई ज्यादा भेद नहीं है, चौथी को पकड़ा, फिर कुछ कुछ थोड़ा बुद्धि चलने लगी, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगा, फिर भी इतना प्रकाश नहीं आया, आधा प्रकाश, अर्ध सत्य, फिर एक बार की, तब तक और थोड़ा ज्यादा समझ में आने लगा, पर यहां पर फिर पता चला कि ये भी वैसी ही है, फिर करते गया और 8 तक चालू रखा, 8 के बाद नहीं किया, फिर उसको पता चला कि प्रॉब्लम 3 में नहीं है, प्रॉब्लम प्रोसेस में है। एक से नहीं सभी से वैराग, एक पुरुष से वैराग नहीं सभी पुरुषों से वैराग, एक स्त्री से वैराग नहीं सभी स्त्रियों से वैराग, कि नहीं तो एक को छोड़ोगे और दूसरे को पकड़ोगे। जैसे वो अर्थी उठाते हैं ना, एक कंधा थक जाता है तो फिर दूसरे कंधे पर लेते, फिर दूसरा थकता है तो फिर इधर लेते, कंधे बदलते रहता है व्यक्ति जो पकड़ता है, वैसे ही पकड़ते रहता है, इधर से बदलता है उधर, उधर से बदलता है उधर। अगर इस चक्र से छूटना है तो ये जो प्रोसेस है इससे ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? सबसे पहला भी प्रश्न है कि कारण क्या है कि व्यक्ति प्रभावित होते रहता है, पर अच्छी परिस्थितियों में सुखी हो जाता है, खराब परिस्थितियों में दुखी हो जाता है। सबने मेरी तारीफ बहुत की तो अंदर ही अंदर क्या होता है, गुदगुदी, और दूसरों ने मेरी निंदा की तो आंसू बह जाते हैं। यश आया तो अच्छा लगता है, अपयश आया उदासी आ जाती है। सर्दी गर्मी, हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय, ये सारे अपोजिट्स में समान व्यक्ति इसलिए नहीं रहना चाहता, नहीं रह सकता, क्योंकि मुख्य कारण है अज्ञान, संपूर्ण अज्ञान नहीं, आधा ज्ञान। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, वी डू नॉट प्रोग्रेस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, वी प्रोग्रेस फ्रॉम लेसर लाइट टू हायर लाइट। हम अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, कम प्रकाश के से ज्यादा प्रकाश की ओर, उस कम प्रकाश की अवस्था में ही यह सारा हो रहा है। मुख्य कारण है अज्ञान, या फिर कहो अर्ध सत्य, या फिर कहो अर्ध ज्ञान, आधा ज्ञान। ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, हमें पता है, थियोरी कहती है कि अचल अडोल रहो, आज कहा है, किसके मिसल, मंजूबन, किसके मिसल अचल अडोल रहो, हनुमान, पर ऐसा कोई हनुमान है नहीं। भूत तो आएंगे, खटखटाएंगे, मार्जिन देखी तो घुसे अंदर, पाँच चोर है, सरदार है, हैरान करेंगे, सब करेंगे। तो मुख्य कारण है हाफ नॉलेज। इसके लिए यदि इन अप्स एंड डाउन से मुक्त करना है, एक ही मार्ग है, इंक्रीज नॉलेज, ज्ञान को बढ़ाओ। हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस। हाफ नॉलेज जो है वो क्या है, अज्ञान से भी बदतर है, इज वर्स देन इग्नोरेंस। उदाहरण, इतिहास में एक उदाहरण है, महाभारत में ही सबसे बड़ा उदाहरण है, एक अभिमन्यु, आधा ज्ञान था, चक्रव्यूह में जाने का ज्ञान था, निकलने का ज्ञान नहीं था, इसलिए मारा गया। हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस। जो परिस्थिति है उसमें क्या करना है, शायद हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। स्तुति हो गई, इतनी स्तुति, इतनी स्तुति, अब कैसे हैंडल करना स्तुति और स्टारडम को, उसका ज्ञान नहीं है। इसके लिए थोड़ा ज्यादा ही खुश हो गए, और फिर जो जितना ज्यादा खुश और गिरे तो चकना चूर, आज कहा है। अज्ञान को समझना है स्वयं के, कि जो मैंने जाना है इस परिस्थिति के विषय में, इस व्यक्ति के विषय में, इन घटनाओं के विषय में, वो संपूर्ण सत्य नहीं है। एक दूसरा एंगल भी है, एक दूसरा आयाम भी है, एक दूसरा डायमेंशन भी है, इन्हीं चीजों को, इन्हीं बातों को देखने का, समझने का। धार्स, ये पहाड़ी है, ये नीचे नक्की झील है, एक है नक्की की झील के बाजू में जो रास्ता है वहां चल रहा है, और वहां से देख रहा है नक्की झील को, उसका जो है देखने का जो दायरा है थोड़ा कम है। एक है वो थोड़ा सा बाबा पहाड़ी पर चढ़ गया, इधर वो थोड़ा सा ज्यादा देख रहा है। एक है इधर टोड रॉक पे चढ़ गया, वो कुछ और देख रहा है। एक कहीं और है, किसी एक दूसरे पॉइंट पर, कोई इस नक की झील के इस ओर है, यहां से देख रहा है। जितना जितना जो ऊपर जाएगा वो पूरा समग्र देख पाएगा, जितना कम देखेगा उतना ज्यादा दुख, जितना ज्यादा देखेगा उतना कम दुख। इसके लिए अगर ये सारी हैपनिंग्स घटनाएं जो हो रही है उसमें हम बार बार अभी दुखी होते अभी सुखी होते, अभी अभी आंसू अभी अभी अत्यंत खुशी, ये जो हो रहा है अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, विसिसिट्यूड्स अंग्रेजी में इसको कहते हैं, अप्स एंड डाउन्स, कहां पर? अंदर मन में, चित्त में, इमोशंस में, फीलिंग्स में, ये जो अप्स एंड डाउन्स है, हे अर्जुन इनको सर्दी गर्मी के समान अनित्य समझ, सहन कर, तितिक्षा। एक और शब्द है उसमें, फॉरबेरेंस, एंड्यूरेंस के थोड़ा आगे, और स्पार्टन सिंपली फोर्टिट्यूड के पहले, टॉलरेंस, एंड्यूरेंस, फॉरबेरेंस, फोर्टिट्यूड और फिर स्पार्टन सिंप्लिसिटी, ये सब सहनशीलता के स्टेजेस। ज्यादा 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 लास्ट जो स्टेज है उसमें व्यक्ति जरा भी प्रभावित नहीं होता है, कुछ भी होने दो कैसा भी होने दो। हाँ, पर ये जो बात है सर्दी और गर्मी, इसको साधुओं ने और योगियों ने उल्टे अर्थों से लिया है द्वापर से। इसके लिए वो समझते हैं सर्दी को सहन कर लेना और गर्मी को सहन कर लेना अर्थात योगी बन जाना, जो जितना ज्यादा परमहंस वो उतना ही गंदा मतलब उसको ये प्रभावित नहीं होता है, ये परिभाषा है। काउंट केसरलिंग जर्मन फिलोसोफर भारत की यात्रा कर विदेश गया और उसने अपने प्रवेश यात्रा, प्रवास यात्रा जो लिखी ट्रेवलॉग, उसमें लिखा कि भारत में धर्म अर्थात अनक्लीनलीनेस, जो जितना ज्यादा अनक्लीनली है, जो जितना गंदा है वो उतना ही ज्यादा धार्मिक कहा जाता है, ये उसने अपने ट्रेवल लॉग में लिखा मतलब यहां साधु संत जो 10-10 दिन स्नान नहीं करते, उसने ये सारे ऑब्जर्वेशन लिखे अपने, उसने ये ऑब्जर्वेशन लिखा, इन इंडिया रिलीजन मीन्स अनक्लीनलीनेस। तो यदि इन अप्स एंड डाउन से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट टिप क्या है? मुख्य ज्ञान को बढ़ाओ। किसके ज्ञान को? उस व्यक्ति को समझो। बाबा ने कहा है तुम्हारे आसपास जो पत्ते हैं उनका ज्ञान तुम्हें होना चाहिए, नहीं तो बार बार डिस्टर्ब होते रहेंगे। आसपास पत्ते जो है अर्थात व्यक्ति, साथी, जो भी आसपास है, पति, पत्नी, बच्चे, बॉस, जो भी है, वो सारे पत्ते हैं, उनको समझ लो, नहीं तो दुखी होते रहोगे। उनके स्वभाव को, उनके संस्कार को, उनकी कमियों को, विशेषताओं को, इच्छाओं को, एक्सपेक्टेशंस को, सब समझ के रखो और फिर चलो, नहीं तो बार बार सुख दुख सुख दुख, अनप्रिडिक्टेबल व्यक्तित्व बन जाएंगे, उसका उसको ठिकाना नहीं है कि अगले एक घंटे में मैं सुखी होने वाला हूं या दुखी। क्या किया जाए जो सुख और दुख में समान रहे? क्या करें? क्या करेंगे? करना कुछ भी नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। सात चीजें करेंगे। सुख और दुख में स्थिति समान रहे, सभी परिस्थितियों में अचल अडोल रहे, अंदर कुछ न जाए, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहला है ड्रामा। सबसे पहला क्या है? ड्रामा। इस ड्रामा को समझो गहराई से, जो हो रहा है खेल है, जो हो रहा है कहीं ना कहीं गहरा कल्याण उसमें छिपा है। जो हो रहा है ये वही हो रहा है आज का वरदान। क्या जो हो रहा है नथिंग न्यू, कुछ भी नया कुछ भी नहीं है इसमें, इसके पहले भी हुआ था फिर होगा ऐसा ही होगा। जो जो हो रहा है, जो जो दिखाई दे रहा है, जो जो हुआ फिर रिपीट होगा ऐसा ही। नया इसमें कुछ भी नहीं है, और जिसमें नया ही नहीं है उसमें प्रभावित क्यों होना है। और जो हो रहा है उसमें कल्याण है, और जो हो रहा है वो उसको भी पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है। बाप को हर इस ड्रामा का हर एक्टर पसंद है, और हर एक्टर की हर एक्शन पसंद है। तो कौन सा पार्ट फिर पक्का करते रहना है? ड्रामा ड्रामा टिक टिक जो मिसल चल रहा है, घटनाएं हो रही है, जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। यही होना चाहिए था, जो हो रहा है वही सत्य है, इसके अतिरिक्त तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। बहुत ही अच्छा हुआ। पहला ड्रामा, जितना ड्रामा की स्मृति रहेगी उतना व्यक्ति अडोल रहेगा। जब जब ये भूलेगा, और सबसे ज्यादा भूलता कब है? परिस्थितियों में, जब उसे सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए सबसे ज्यादा तभी भूलता है। जब से ज्यादा जितना सबसे ज्यादा ज्ञान का चिंतन जब उसे करना चाहिए तब सबसे कम करता है, और जब शांति होती है तब एकांत में बैठ के सबसे ज्यादा ज्ञान चिंतन करता है। पहला। दूसरा, कार्मिक अकाउंट या हिसाब किताब। ये जो हो रहा है और ये जो हुआ, आई एम द क्रिएटर, मैं हूं इसका रचता, मैंने आह्वान किया है इस परिस्थिति का, तो ये परिस्थिति आई है, मैंने ही संकल्प भेजा था प्रकृति में, प्रकृति और संकल्प की रिएक्शन हुई। जो संकल्प मैंने भेजा था ए, उसकी रिएक्शन हुई बी के साथ, और सी घटना परिणाम है। जो निर्माण हुआ है, जहां मैं हूं, जिस स्थान में, जिस पद में, जिस स्थिति में, जिन लोगों के साथ, और जो जो हो रहा है आसपास मेरे इर्द गिर्द, किसने रचा है उसको? मैंने, मेरी रचना है। इसके लिए दूसरा कोई कितना भी कुछ करे उसको बदल नहीं सकता, बदलना भी मुझसे होगा, मैं ही बदलूंगा इसको। तो दूसरा, कर्म की सिद्धांत को समझना, कर्म की फिलॉसफी को समझना, कि मैं ही निर्माता हूं इस परिस्थिति का। ये नहीं, ये जो इसको मैं कह रहा हूं तुम्हारी वजह से हुआ, तुम, कोई मुख से नहीं कह रहा परंतु मन की उंगली उसके तरफ है, तुम, तुम्हारी वजह से। दूसरा, कर्म सिद्धांत। तीसरा, कैसे जीतेंगे? साक्षी भाव, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। तीसरा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। सुख आया, दुख आया, अभी अभी ठंड थी, अभी अभी गर्मी है, अभी गर्मी और बढ़ेगी, फिर ठंड आएगी, फिर बारिश होगी, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा। डिटैच्ड, अच्छा है रमणीक दृश्य देखा, अच्छा है रमणीक समाचार जाकर सुनाओगे, अच्छा तो है कि माँ बाबू का मानसून देख लिया और पहाड़ों की बारिश देख ली। ऐसी बारिश तुमको कहीं देखने नहीं मिलेगी, अच्छा ही है, टेंट टूट गए, दिल तब नहीं हिलेगा जब साक्षी रहेंगे, नहीं तो दिल हिलते रहेगा। वास्तव में दिल के हिलने का बाहर की स्थितियों से संबंध नहीं है, दिल ने पहले से तैयारी कर रखी है। वो तो टेंट उड़ जाना तो कारण था, दुख तो व्यक्ति पहले ही हो चुका है, केवल ये बदल रहे, व्यक्ति बदल रहे हैं। ए था फिर बी हो गया, बी को छोड़ा सी हो गया, डी हो गया, आ को छोड़ा बा आ गया, बा को छोड़ा का आ गया, व्यक्ति बदल रहे, दुख तो वही है। पर हम सोच रहे हैं इस समय इसने दुख दिया था, अब ये दुख दे रहा है, फिर ये भी दुख दे रहा है, ये सभी दुख देने वाले हैं। तो दुख देने वाले तो छोड़ते क्यों नहीं सबको, पर हम सोचते हैं ये दुख देने वाला है, सभी दुख देने वाले ये नहीं सोचते, ये जो है ना ये ठीक नहीं है, इसको बदलो तो दूसरा आ जाए। तीसरा साक्षी भाव, चौथा लक्ष्य, एम। एम क्या है? बाप समान। एम क्या है? फरिश्ता। एम क्या है? देवता। एम क्या है? अचल अडोल स्थिति। एम क्या है? कर्मातीत। इस अवस्था में व्यक्ति हिलता नहीं है, ये इतनी ऊंची अवस्था है कि इस ऊंची अवस्था में ये सब चीजें नहीं हो सकती। अपने लक्ष्य को बार बार याद रखना, यदि मैं ऐसा हिलता रहा ठीक है तो ये लक्ष्य है, इस गंतव्य तक कैसे पहुंचूंगा, किस गति से पहुंचूंगा, क्या ये अच्छा लगेगा कि बाकी सब आगे चले गए और हम पीछे रह गए, और तुम्हारे दुख भी कितने हैं चिल्लर, उसको ही बड़ा समझ के दुखी होते रहते। हर एक व्यक्ति सोचता है मैं ही सबसे बड़ा दुखी हूं, मेरे जैसा दुख किसी को ही नहीं है, ऐसी बीमारी किसी और को आई नहीं होगी, मुझे आई है और दुखी है। अपने दुख दर्द में हर आत्मा खोई हुई है, साकार महावाक्य है बाबा के, किसी मुरली में आए थे, हर आत्मा अपने ही दुख दर्द में खोई हुई है। कितना? चौथा एम। पांचवा क्या करें? पांचवा लाइफ को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। इस जीवन में सुख भी आएगा दुख भी आएगा, उसको स्वीकार कर लेना है। जो संसार के लोग हैं, जो ज्ञान अध्यात्मवादी नहीं है, वो भी अडोल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाव, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी है धूप जिंदगी, हर घड़ी बदल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है। द ओनली सर्टन थिंग इन लाइफ इज अनसर्टेनिटी, द ओनली स्टेबल थिंग इन लाइफ इज इनस्टेबिलिटी। इस दुनिया में एक ही चीज निश्चित है और वो है अनिश्चितता, अनिश्चितता। यही जो अनिश्चितता है यही निश्चित चीज है, अर्थात कुछ भी निश्चित नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ, लाइफ को समझो, लाइफ में ये सब होगा, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। डोंट माइंड किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई ना कुछ ना कुछ तो करेगा कि नहीं। कांटों की दुनिया है तो कांटे लेके तो खड़े हैं ना, अमृत वेला पूरा हुआ कांटा चुभा, गेट पर ही खड़ा है कोई कांटे लेकर, सीढ़ी से उतरा कांटा चुभाया, कुछ करने गए ड्यूटी पर गए कांटा चुभा, कांटों की दुनिया है, कांटे तो चुभाएंगे, और चुभाना जब सबसे ज्यादा चुभता कब है? जब चुभाने वाला अपना हो, जिसको हमने दोस्त कह कर कहा है। शत्रु चुभाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कौन चुभाता है? जब अपने बाबा ने कहा, बाबा सबसे ज्यादा नहीं, रुस्तम से रुस्तम से उसके पहले एक लाइन है, सबसे फर्स्ट क्लास कारीगर बाबा है, ऐसा है, कुछ है। तो सबसे ज्यादा तो माया इसी को आती है, बाप को ही आती है, कुछ एक दूसरा वाक्य है। तो क्या याद रखना है? ये अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेगा, लाइफ मतलब ऐसी ही है, अभी धूप है अभी छाव है, एक्सेप्ट इट एज इट इज, उससे क्यों संघर्ष करते हो? ये भी आएगा वो भी आएगा वो भी आएगा वो भी आएगा। दुनिया में कितने लोग हैं, संसार में कितने मस्ती से रहते हैं, अभी अभी कुछ हो गया बिजनेस में लॉस हो गया, चलो ठीक है, दे इन्वेंट देयर ओन मेथड्स अपने आप को खुश रखने को, पिकनिक जाएंगे सिनेमा जाएंगे कुछ करेंगे दोस्तों के साथ कुछ करेंगे, भूल जाएंगे उसको, पकड़ के नहीं रहते। ब्राह्मण कभी कभी लगता है ज्यादा ही पकड़ के रखते, बाकी वो लोग तो भूल भी जाते, उनको याद भी नहीं रहता किसी ने कुछ कहा क्या कहा, भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों को स्थान नहीं देना है अंदर, ये तो होगी और होना ही है, अच्छा ही है हुई, हुई वर्चुअली, दो दोस्त लड़ते हैं उधर और दूसरे दिन ठीक भी हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में भी क्या ऐसे ही है ना, दोनों एक दूसरे का विरोध करते, इतना विरोध करते और दूसरे दिन देखो कि दोनों की दोस्ती हो रही है, फोटो हाथ में हाथ गले में हाथ डालते, अरे कल तक तो ये विरोधी थे, ये रातों रात पलट जाते हैं। आज कहा ना, बाप दुनिया को ही पलटाने आए हैं। हाँ, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट, सो बेटर, उस दिन कल कहा था, कल या परसों, फैमिलियरिटी ज्यादा नहीं जाना है, ज्यादा नजदीक जाना नहीं, ज्यादा फ्रेंडशिप ना हो, नहीं तो जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप उतना गहरा दुख, जितना गहरा मोह उतना गहरा दुख, जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। दुख उसी अनुपात में आएगा जितने तुम अटैच हो व्यक्ति से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, संबंध से। कहा थे पांचवा, अंडरस्टैंड लाइफ, एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज, स्वीकार करो उसे जैसी है जो है। वो कौन सा गीत है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, तेरे हर गम को हमने गले से लगाया, तू भी हमको गले से लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। ये वर्ल्डी फिलोसॉफी सारी पांचवी पॉइंट, दुनिया वाले जो भी करते हैं ये, अगर आपको लगता है ये ज्ञान बहुत ही ओवरडोज हो रहा है, छोड़ो इसको, बाजू में पांच वाला ठीक है, अपने ये अपने टाइप का है ये तो थोड़ा बहुत ही धर्म धर्म और बूढ़े बड़े लोग उनके टाइप का है, ये थोड़ा अपना मॉडर्न सुविधाजनक कन्वीनियंट लग रहा है, ये थोड़ा अपने टाइप का है। लाइफ में ये सब होगा, ऐसे शब्द यूज करने का, लाइफ अभी हम तक जीवन और ऐसी बातें कर रहे थे, बाप समान जीवन सारी ऊपर से जा रही थी, अभी ये अपने टाइप का है। लाइफ मतलब एक्सेप्ट करो, खुशी रहो, हैप्पी गो मेरी, और आगे बढ़ो। अप्स एंड डाउन तो होगा ही, एक्सेप्टेड, ऑल हैव एक्सेप्टेड, दुनिया में द्वापर से अब तक सबके जीवन में ऐसे हुआ, सब दुखी होके थोड़ी ना बैठे रहे, उदास होके थोड़ी ना बैठे रहेंगे, या वो तो इट्स अ पाथ ऑफ थॉर्न्स, कांटों का मार्ग है, अगर कोई साथ ना दे तो एकला चलो। अब आ जाओ सिक्स्थ पे, सिक्स्थ अर्थात, इफ दे आंसर नॉट टू थाय कॉल वॉक अलोन, इफ दे डेजर्ट यू वाइल क्रॉसिंग द विल्डरनेस, ओपन दाय हार्ट एंड स्पीक आउट अलोन, वॉक अलोन, एकला चालो रे, एकला चालो रे। रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम है, एकला ही चलना है। सिक्स्थ, समान, समान से स्थिर रखना स्वयं को, हजारों स्वयं समाने, कोई भी समान लिया जा सकता है, समान के अभ्यास से स्वयं को स्थिर कर देना परिस्थितियों में। मैं अचल अडोल आत्मा हूं, मैं महान योगी हूं, निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, मैं स्थित प्रज्ञ योगी हूं, मैं तपस्वी हूं। ये जैसे कि हमारा मर्जीवा जन्म है, इस दुनिया से हम मर चुके हैं, ये पावरफुल संकल्प है, इन संकल्पों के सामने ये सारी परिस्थितियां बहुत छोटी है। और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण, बाप की याद, बाप की छत्र छाया, बाप का प्यार, बाप की मदद, बाप का साथ, परमात्मा साथ, गॉड्स कंपनी, गॉड्स लव, गॉड्स हेल्प, ये सब होगा। तो ये सब क्या है, आंधी तूफान बहुत छोटे है, इसका जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है जाओ जाकर मेरा संदेश दो, वो कहते हैं नो दे आर हॉस्टाइल, वो हमको मारेंगे पीटेंगे, सारे लोग विरोध में है आपके, यूर हेरी वेरी हेयर इज नंबर्ड, वो कहता है उनको तुम्हारे सिर पे जितने बाल है ना एक एक गिना हुआ है, कुछ नहीं होगा, यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड, जाके राखे साई या मार सके ना कोई, तुम्हारे सिर का बाल भी नहीं बाका होगा, यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड, गिने हैं मैंने, कुछ नहीं होगा जाओ तो परमात्मा साथ, परमात्मा मदद, परमात्मा छत्र छाया, परमात्मा साथ, परमात्मा अनुभव, ये सब मेरे साथ है। तो ये अप्स एंड डाउन्स, ये सुख दुख जय पराजय हानि लाभ निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी खेल है, कुछ नहीं है, गॉन है, इनसिग्निफिकेंट। तो आज इस पर काम करना है। धीर, मैं धीर आत्मा हूं, धीरज धैर्य पूर्ण आत्मा हूं, धीरज हूं, अचल अडोल, सुख दुख नित्य अनित्य ये सब सर्दी गर्मी के समान है, आए चले जाएंगे। आए हैं मतलब जाना है उनको। जो आने में जाना देख लेता है वो सुखी होता है, और जो जाने में आना देख लेता है वो भी ज्यादा दुखी नहीं होता। दोनों ही मृत्यु में, जन्म में जो मृत्यु देख ले, मृत्यु में जो जन्म देख ले, मिलन में जो विरह देख ले, विरह में जो मिलन देख ले, ये अभ्यास करना है। जो हो रहा है उसके अपोजिट देख लेना उसके अंदर, तो फिर व्यक्ति स्थिर रहेगा। यश आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य विजय यात्रा करके आता है, बहुत जश्न मनाते, चाणक्य आके कहते हैं व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन सेलिब्रेशंस। वो कहते हैं अरे तो आप ही ने तो कहा था ये यात्रा मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, ये अगर मैं जीत जाऊं तो और कुछ करना बाकी नहीं है। वो कहता है वो तो ऐसे ही कहा था, अभी आगे की तैयारी करो, डोंट वेस्ट टाइम इन सेलिब्रेशन, ये जश्न मनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। टू डू नॉट वेस्ट टाइम इन सेलिब्रेशन, प्रिपेयर, प्रिपेरेडनेस। ओम शांति।